તારીખ 3/7/1994 શ્રી મદ્રાજચંદ્ર પત્રાંક 212 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું દેવલાલીમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 44
વચન બોલે જીવ નિર્વાણ માર્ગ ને પામે છે. જેના વચન બળે पहला चरण की जो पहला कलश था, नमस्तमय साराय स्वानुमत्याचकासते, उसमें उसने ये बोला कि एक अपना आत्मा ही नमस्कार करने योग्य है। पहले चेतन नमस्कार के योग्य है, अचेतन नमस्कार के योग्य नहीं है। जड़ है और नमस्कार के योग्य नहीं है। जबकि दूसरा कलश आचार्य महाराज का वो है कि वो जिनवाणी को नमस्कार किया है। खुद ने प्रश्न उठाया कि आपने पहले तो ये कहा था कि चेतन ही नमस्कार करने योग्य है, अचेतन तो नमस्कार करने योग्य नहीं है, ऐसा फरमाया था। अब आप कहते हैं कि जिनवाणी की पूजा करना, जिनवाणी को नमस्कार करना, तो अचेतन को नमस्कार क्यों करना है? ये प्रश्न खुद ने उठाया। तो बोला कि जिनवाणी है वो नमस्कार करने योग्य है, पूजन करने योग्य है, साथ पूजा करते न करना, चाहे भगवान की वाणी हो चाहे ज्ञानी पुरुष की वाणी हो, वाणी भी नमस्कार है। तो क्यों नमस्कार करने योग्य है? अचेतन होने पर भी क्यों नमस्कार करने योग्य है? क्योंकि ये सर्वज्ञ अनुसारिणी है। क्या जवाब दिया उन्होंने? भगवान सर्वज्ञ परमात्मा होने से माने सर्वज्ञ स्वरूप को अनुसरण करके निकली हुई है, और ज्ञानी की वाणी अपने सर्वज्ञ स्वभावी आत्मा को अनुसरण करके निकली हुई है। इसलिए सर्वज्ञ अनुसारिणी होने से पूज्य है, ऐसा उत्तर दिया।
छुटने की
तो ज्ञान हो गया तब। आदमी था उसमें पड़ा फिर कैसे दृष्टांत दिया। ऐसे संसार में जीव है बहुत आकुलित होता है, वो तो सुखी होने के लिए विषय में संजान संपाता है और दुखी वहां होता है। विषय बदलता रहता है, विषय बदलता है, एक जगह मुख्य होता है तो विषय बदलता है, दूसरे जाता है फिर विषय बदलता है, हर जगह दुख होकर एक दुख में अच्छे दूसरे दुख में दूसरा दुख है तीसरे दुख में दुखी दुख है। संसार में किसी को सुख स्पर्श करती हुई निभूति होती है, वाणी में भी शांति है, शांत वाणी होती है और दूसरों को शांति में वो निमित्त होती है। जिसको आत्मशांति चाहिए तो उस वाणी को सुनने के लिए लालायत होते हैं, आत्मशांति को पहचान करते आत्मशांति कैसे प्राप्त होती है उसका उपाय करते इलाज करते हैं। जिसके वचन बल से जीव निर्वाण मार्ग को प्राप्त करता है, निर्वाण मार्ग को निर्वाण माने मोक्ष, मोक्ष माने अनंत शांति अनंत सुख, इसका मार्ग मैंने पाए इलाज। निर्वाणों का इलाज को या आत्मा की सुख शांति का इलाज को, इस इलाज को जो प्राप्त होता है मार्ग को इलाज कहते हैं, मार्ग को रास्ता कहते हैं, उपाय कहते हैं, इलाज कहते हैं। ऐसे सजीवन मूर्ति ना ज्ञानी पुरुष शब्द का प्रयोग नहीं किया, सत्पुरुष का प्रयोग नहीं किया, लेकिन सजीवन मूर्ति ऐसा प्रयोग किया। इसका मतलब क्या है, जो प्रत्यक्ष ज्ञान विद्यमान ज्ञान स्वर्ग में चले गए, भूतकाल में चले गए, इस बात में जो बात करना है वो प्रत्यक्ष है उसकी बात। ऐसी सजीवन मूर्ति का पूर्व काल में जीव को संयोग, मैंने संयोग बहुत बार हो चुका है। वैसे तो ऐसा योग बहुत दुर्लभ होता है, प्रत्यक्ष ज्ञानी मिलना ही बहुत दुर्लभ होता है। भूतकाल में तो अनंत ज्ञान एक दो नहीं हुए, सकल भी हुए हैं, अनंत आचार्य आदि निर्गुण निराज भी हुए हैं, पर अनंत ज्ञानी भी उस काल में कभी कभी हमको योग मिला भी है, नहीं मिला है तो बात मिला भी है, किंतु इसकी पहचान नहीं हुई। ज्ञानी पुरुष कैसे पहचान, क्यों पहचान नहीं हुई, तो ज्ञानी पुरुष में सर्वसाधारण जैसे लोग अपने बाह्य जीवन में रहते हैं वैसे ही बाह्य जीवन में वो भी रहते हैं, तो सब शरीर के लोग उसका कोई दूसरा उनको कोई नई बात नहीं मिलती, वो भी खाते हैं सब प्रकार के जो अपना व्यवहार होते हैं सामान्य मनुष्य जनता होते हैं इसका इसका भी ऐसा ही व्यवहार देखते हैं, उसकी पहचान जल्दी से नहीं। जीव ने पुरखान पहचान करने का प्रयत्न उचित किया भी होगा, भूतकाल में कभी कभी ज्ञानी मिले होंगे और पहचान करने का प्रयत्न भी किया होगा। कैसे प्रयत्न किया होगा, तो दूसरा ने बताया तो ये ज्ञानी पुरुष है, उसका संग करो सत्संग करो योग रिद्धि योग आदि ऐसी ऐसी कामनाओं से अपनी दृष्टि बनी। वो क्यों गया? मंदिर में जाता है भगवान के पास या महात्मा के पास जाता है तो कुछ न कुछ संसारिक सुख जुटाने के लिए प्राप्त करने के लिए महात्मा है जिसके पास रिद्धि सिद्धि चमत्कार होगा अपना जो दुख है वो दूर होगा, ऐसी अपेक्षा लेकर के जाता है तो उनको ज्ञानी पहचान। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर महापुरुष के ज्ञानी पुरुष के पास जाना हो तो ऐसी अपेक्षा आशा लेकर के अभिलाषा लेकर के नहीं जाना चाहिए, सिर्फ उतना ही मकसद होना चाहिए इसके पास जाने का कि हमारा आत्मकल्याण कैसे मैं आत्मशांति ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी बीमारी कैसे चली जाए, हमारी निर्धनता कैसे चली जाए, प्राप्ति कैसे हो, ऐसी सांसारिक भावना को लेकर के ज्ञानी पुरुष के सभी समय में नहीं जाना चाहिए। ठीक है ना?
कारण सत्पुरुष की पहचान
चढ़ जाता है तो मान को कैसे मिटाना, क्रूर मान माया लोक चारों प्रकृति है, बड़ी दूषित प्रकृति है, बहुत गलत रूप होता है, उस मिटाने का प्रश्न करेगा कैसे मिटाना, कैसे मिटाना। जबकि कृपालु देव बार बार मिलते हैं कि सत्पुरुष की अत्यंत भक्ति जो पहचान से ही होती है, बिना पहचान सभी प्रकार के दोष मिटाने के मास्टर के क्या है मास्टर, दोष के ताले अनेक हैं, इसकी चाबी एक चाबी मिलेगी जिसको पहचाना ही त्याग बिना रहेगी नहीं, वो सिखानी नहीं पड़ेगी, लानी नहीं पड़ेगी, करनी नहीं पड़ेगी, हो जाएगी। तो जब जब सत्पुरुष मिले उसको रिद्धि योग सिद्धि योग आदि कुछ न कुछ सांसारिक सुख की अनुकूलता की भावना रहेगी और उस कारण से उसकी दृष्टि मलिन रही, दृष्टि मैंने मति मलिन रही, जिसकी मति मलिन होती है वो मति सत्पुरुष की पहचान कर सकती नहीं, उसकी दृष्टि मलिन थी, जो दृष्टि मलिन हो तो ऐसी सतमूर्ति के प्रति बाह्य लक्ष्य रहता है, इसके पास बहुत ज्ञान है, इतना शास्त्र का ज्ञान है, इतने अच्छे समझा सकते हैं, भाषा का योग कितना अच्छा है, अरे गाता है कितना अच्छा, व्याख्यान करते करते तो ललकारते हैं, लेकिन ललकारते नहीं और गला अच्छा होता है, गाने की हिम्मत होती है, उसकी भी मेरी बात ही सुनने वाली कितनी फाइन है, क्लास वन ऑरेटरी, वाह मजा आती है अपने को तो सुनने में, पर्सनालिटी है वो गुरुदेव नहीं है। क्या बोले? गुरुदेव का शरीर क्या था? थोड़ा एकदम साड़ी शरीर था और बहुत तेजस्वी था और हमेशा बहुत सुंदर शरीर था, एकदम पिंक कलर की स्किन थी, बहुत सुंदर से राजकुमार थे। वहाँ से आए तो शरीर का भी पुण्य बहुत था, बहुत हायर पर्सनालिटी वाले थे, तो वो गुरुदेव नहीं। वो व्याख्यान करते हैं तो वो भी गुरुदेव नहीं। छटा है बोलने की तो वो भी गुरुदेव नहीं। उसका शास्त्र ज्ञान तो वो भी गुरुदेव नहीं है। शास्त्र ज्ञान तो गुरुदेव नहीं बोले क्या? उसके विकल्प समझाने के जो राग आता है कि दूसरे को समझाओ तो वो भी गुरुदेव नहीं है। तो गुरुदेव कौन था कि इनकी जो परमात्मा तत्व जो आत्मा है, आत्मा का परम स्वरूप, परम आत्म तत्व, उसको परमात्मा कहते हैं। और हमने तो इसका दर्शन किया, हमने शरीर का दर्शन नहीं किया, वाणी भी नहीं सुनी। क्या सुनते सुनते ज्ञान हुआ तो कहने वाणी नहीं सुनी, तो हम उसको आत्मा को देखा परिणाम तक। को देखता है, शरीर की पर्सनालिटी को देखता है, उसकी दृष्टि मलिन है। जिसकी दृष्टि मलिन है उसको बाह्य लक्ष्य रहता है। बाह्य लक्ष्य क्यों रहता है? दृष्टि मलिन है। जिससे पहचान नहीं हो पाती, मिलने पर भी पहचान नहीं हो पाती, ये पहचान नहीं होने का कारण बताया। अब पहचान होती है तो क्या होता है या क्या हो जाता है? जब पहचान होती है तब जीव को कोई अपूर्व स्नेह आता है। ये अपूर्व प्रेम, अपूर्व स्नेह को भक्ति का नाम दिया है। सच्ची भक्ति, यथार्थ भक्ति, को अपूर्व स्नेह कहते हैं, अपूर्व भक्ति कहते हैं, अपूर्व प्रेम कहते हैं। उसको राग नहीं कहते हैं। क्या? उसको राग नहीं कहते हैं। ये इसका लक्षण है। पहचान हो, इसका लक्षण क्या? उसको राग है, वो विराधना है, जबकि ये निर्मल पवित्र प्रेम है, वो आराधना है। राग है वो उसमें मलिन भाव है, साय भाव है, जबकि ये अपूर्व स्नेह, अपूर्व प्रेम है, वो पवित्र पर्याय है, उसमें कषाय नहीं है, इसलिए उसको आराधना बोलने में, विराधना बोलने में। पुद्गल पर्याय है, वो पुद्गल के पर्याय है, जबकि प्रेम का आधार प्रेम मूर्ति पवित्र आत्मा होता है। आधार अलग नहीं रहता है। अपूर्व स्नेह आता है, यह ऐसा कैसा कैसा अपूर्व स्नेह आता है, इसका वर्णन करते हैं। अभी वह ऐसा कि इस मूर्ति के वियोग से एक घड़ी भी आयुष का भोगना उसको बड़ी विटंबना लगती है। जैसे कोई मछली को पानी के बाहर निकाले तो तड़पती है, उसके हालत ऐसे के बिना वो जी सकते। जाड़े के दिन में क्या होता है, जो नदी का बहता पानी होता है ना, जिसमें मछली होती है, इससे भी रेत ठंड होती है। जो किनारे की रेत होती है ना भीगी भीगी, वो बहुत ठंडी होती है, पर पानी जो बहता है वो उतना ठंडा नहीं होता है, पानी थोड़ा गर्म होता है। रेत पत्थर है वो एकदम ठंडा हो जाता है। उस मछली को निकाल करके वो भीगी हुई रेत में डाले ना, फिर नहीं जीएगी, जीने वाली नहीं। ठंडी से समझ नहीं है इसका। वो पानी का जीव है, पानी में जी सकता है, बिना पानी जी नहीं सकता। ऐसे सत्पुरुष के योग से उसको एक घड़ी भी जीवन में स्फूर्त हो जाता है, ऐसा प्रकार उसको परिणाम का हो जाता है। तो पहचान हुई है, इसका ये लक्षण है। और ना पहचान नहीं हुई है, इसका लक्षण है, तो चलता है। जैसे कि योग हुआ तो संतोष, फिजिकली ऐसा होता है तो ये तो दिव्य प्रेम है। जहाँ सांसारिक राग होता है वहां भी संग चाहता है, सांसारिक राग में भी संग चाहता है, दूर रहना नहीं चाहता, तो ये तो दिव्य प्रेम है। तो ये हो गए
प्रशस्त राग कहते
हैं उसको, प्रशस्त राग। हाँ प्रशस्त राग, राग शब्द ही पोसाता नहीं है, राग शब्द नहीं पोसाता है, उसको दिव्य प्रेम को राग है तो थोड़ा घटिया शब्द, क्योंकि उस राग में मलिनता होती है ना। किसको जानने वाला, कि अपने परम तत्व को जानने वाले को ही विद्वान कहते हैं, दूसरे को विद्वान वो सही विद्वान है। वितराग भाव को उत्पन्न करता है, इस पुरुषार्थ को पंडित वीर्य बोला है अपने अध्यात्म शास्त्र में, पुरुषार्थ को पंडित वीर्य बोला है, उसी का नाम सच्चा पंडित है। तो पंडित और विद्वान वास्तव में जो सच्चा है वो ज्ञानी है, और अभी जो रूढ़िगत कहने में आता है वो पढ़ाई करने वाले। पंडित को वहां तक ठीक है, वास्तव में पंडित ने लिखा है कि जिस शास्त्र को निमित्त बना करके अपना मोक्ष को जो नहीं साधता है, तो वैसे कथा पर भी शास्त्र का बड़ा एक बंडल रखा जाता है, वैसा सिर पे रखा गया क्या फर्क पड़ा है? भी बोझा उठा, जैसे कथा बोझा उठाता है वैसा ये पंडित भी बोझा उठाता है। और तो बता दिया कितने बताया, बुद्धि कम होती है इसलिए गदा कहते हैं, मन तो होता है लेकिन बुद्धि कम है ना, लौकिक में भी जिसकी बुद्धि मंद होती है तो कहते हैं गदा जैसे, मंद बुद्धि के काम है ऐसा, सर्प है, गदा है, क्रिया है, कंसा है, कुक्कुट है, तोता है, चिड़िया है, ये सब संयत समझता है, सहन में मैंने उसको मारते तो वो भी इसकी सहन है तो समझता है, इसकी आयु भोगना टमना लगती है, अर्थात उसके वियोग से वह उदासीन भाव से उस सतमूर्ति में ही वृत्ति रख करके जीता है, तो उसमें ही उसकी वृत्ति रहती है और फिर उसकी वृत्ति नहीं जाती है, तो उसकी वृत्ति और कहीं नहीं जाती, तो फिर खान पान होते तो होता है उदासीन, पदार्थ का संयोग होता है और उपयोग देना पड़ता है, तो वह संयोग और मृत्यु ये दोनों उसको समान हो जाता है, तो उसको दूसरा पदार्थ मृत्यु जैसा
नहीं
होता, ऐसी दशा जब आती है, जब ऐसी दशा हो जाती है, उस जीव को मोक्ष का मार्ग बहुत निकट होता है, तो उसको संसार में रुकने के लिए, रुकावट के लिए कोई पदार्थ नहीं रहा, कोई प्रसन्न नहीं रहा, कोई बात नहीं, बस संसार में क्यों जीव भटकता है कि उसकी रुकावट है इसलिए भटकता है, ये अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है, पहले भाग जाता है फिर द्रव जाता है, जैसे एक जीव चना में होता है, एक जीव मुंह में होता है, होता है ना, कितने में आता है, खाना पड़ जाता है, फिर पड़ता है, निकलता है, पहले अंदर पैदा होता है,
फिर भूल पड़ के बाहर निकला, वो क्या पैर माँ क्या पैदा हुआ, और उसको अच्छा पन बहुत लगा था, ये मुंह बनाए ना अच्छा मुंह का तो रोज बनाना चाहिए, रोज बना के खाना चाहिए, इतना अच्छा है शरीर को तंदुरुस्ती देता है, विटामिन बी ट्वेल्व बी बी सिक्स बी कॉम्प्लेक्स है, खाते 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 इतना रस लेते उतना रस लेती में आयु बन जाता है, थ्री इंच होने का आयु बन जाता है, तो इसकी जो मुंह में जो योनि स्थान होती है वहाँ ચાવલ મેં ઈયળ ઓર ઘઉં મેં ધનેડા અલગ અલગ જાતિ કે અલગ પ્રકાર કે જીવ વહાં ક્યો પેદા હો ગયા पहले उसका भाव गया फिर खुद ही गया,
खिलाने में या खाने में दोनों,
हाँ दोनों में, इसलिए खिलाते हुए ध्यान रखना, प्रशंसा मत करना,
प्रशंसा की अपेक्षा नहीं
रखना, बहुत अच्छी चीज बनी है बहुत अच्छी बनाई है तुम खाए अच्छा टेस्ट है वो है वो है वो मत करना, वो मत करना, सलाम। कोई है, चलता है इसके बिना, खाते हैं पीते हैं सो जाते हैं, तो वेदना मिले उसकी वेदना होनी चाहिए, इतना तो कभी नहीं हुआ। सुखिया सर्व संसार खावे और सो, खा करके सो जाते हैं, क्योंकि खाने के बाद नींद आने लगती है, भी लगती है, नींद भी आती है। सुखी आश्रम संसार खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर गावे और बोले।
उत्तर मिल जाएगा तुमको, ठीक है।